पृष्ठ संख्या 126 अध्याय 6 उत्तर में मुस्लिमों का उदय। जब हर्ष के साम्राज्य का पतन हुआ तो उत्तर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। राजपूत लोग पश्चिम के अपने मूल स्थानों से उत्तर और पूर्व को फैल गए और हिमालय के क्षेत्रों में तथा गंगा और यमुना नदियों से सिंचित मैदानों में और गुजरात तथा उड़ीसा के बीच में विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों द्वारा खंडित विशाल प्रदेश में अपने राज्य कायम कर लिए। जिनके पास राजदूत पदवी या नाम नहीं थे, उन्होंने नकली वंशालियां बना ली और इस प्रभावशाली नस्ल से खुद को जोड़ लिया। इस प्रकार राजपूत लोग मुस्लिमों के प्रकट होने के पहले पंजाब से दक्खन तक और अरब सागर से बंगाल तक के भारत की नियति के स्वामी थे। उनके आधिपत्य के में उत्तर भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत बदलाव आए। प्रजाति, राजनीतिक और धार्मिक सीमा चिन्ह विलुप्त हो चुके थे। वाराह मिहिर ने बृहत संहिता में जिन प्राचीन कबीलों का उल्लेख किया था या 14वीं सदी में समुद्रगुप्त ने जिन कबीलों को लिखा था, जैसे लाट, पंचाल, अर्जुनायन, यादव, मालव, कोशल, वत्स, शक, अनर्थ, विदेह, कुरु, मत्स्य, चेदी और अन्य अनगिनत कबीले, वे सब लुप्त हो गए थे और उनका स्थान गुर्जरों, राष्ट्रकूटों, गहरवारों, कलचूरियों, चंदेलों, चौहानों, परिहारनों, तोमरों, पनवारों और सोलंकियों ने ले लिया था। सामंती संस्थाओं ने प्राचीन समितियों और सभाओं और कबीलाई राज्यों को समाप्त कर दिया था। प्राचीन साम्राज्यवादी धारणा समुद्र से समुद्र तक आधिपत्य लुप्त हो गई थी और एक किस्म का शक्ति संतुलन, राजाओं की संधियां तथा प्रतिसंधियों का संतुलन स्थापित हो गया था, जिसके कारण गृह युद्ध रोजमर्रा की वस्तु हो गई थी और राष्ट्रीय एकता एक दुर्लभ स्वप्न हो गया था। संस्कृति के स्थल और व्यस्त तथा धड़कते जीवन के क्षेत्र परिवर्तित हो गए थे। मगध अब साम्राज्य का पालन नहीं रहा। पाटलिपुत्र और गया खंडहर हो चुके थे और चार दीवारी वाले उनके शहरों में कुछ ही लोग आवास करते थे। वैशाली, कुशीनगर, रामग्राम, कपिलवस्तु और श्रावस्ती, जो बौद्ध इतिहास के प्रसिद्ध नगर थे, वह वीरान हो चुके थे। राजनीतिक सरगर्मी का स्थल मध्य देश से पश्चिम और सुदूर पूर्व की ओर स्थानांतरित हो चुका था। पश्चिम में कन्नौज, ग्वालियर, दिल्ली, अनहिलवाड़ और अजमेर ने और पूर्व में गौर ने राजनीतिक जीवन, कला और साहित्य के केंद्रों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया था। धार्मिक मामलों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था। हर्ष का भारत अभी भी मुख्य रूप से बौद्ध या शैव था। 11वीं सदी में भारत, जैसा कि अलबरूनी ने उसे देखा, एकदम भिन्न था। बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म का मिश्रण और शाक्त संप्रदाय या तांत्रिक संप्रदाय देश के एक कोने में यानी बंगाल में सीमित था। जैन धर्म पश्चिम में गुजरात और राजपूताना में विद्यमान था, किंतु भारत का मुख्य धर्म हिंदू धर्म था और उसके हिंदू सूचनादाताओं और साहित्यिक विद्वानों के देवकुल में विष्णु या नारायण पहला देवता है, जबकि शिव का सिर्फ कभी कभी ही उल्लेख मिलता है, पर वह भी अनुकूल तरीके से हमेशा नहीं। यह परिवर्तन भारत के सामाजिक जीवन में ब्राह्मण धर्म के आधिपत्य के कारण हुआ। यह आधिपत्य गुप्त काल में शुरू हुआ और तब पूरा हुआ जब विदेशी आव्रजकों को हिंदू सामाजिक पद्धति में स्वीकार कर लिया गया। ब्राह्मणों ने सिथियनों, हूणों, शकों और अन्य विदेशियों को और गोंडों, भीलों तथा अन्य देशी वर्गों को राजपूत बना लिया और राजपूतों ने बर्बरता से सभ्यता में उनकी पदोन्नति की कीमत श्रेष्ठता से के उनके दावे को स्वीकार करके और उसकी पुष्टि करके चुकाई। वैष्णव संप्रदाय, जो कि किसी समय शास्त्र विरोधी पद्धति थी, उसे ब्राह्मणों ने बहुत पहले ही अपना मानकर अधिकृत कर लिया था, किंतु शिव पूजा जनसाधारण और अर्ध हिंदू लोगों का धर्म था। वैष्णव संप्रदाय ने पहले उन्हें अपने संप्रदाय में रहने की सिफारिश की, क्योंकि उसमें पुरोहित की भूमिका बहुत महत्व की थी। शैव संप्रदाय के कर्म कांड पुरोहित के बिना ही किए जा सकते थे। राजपूत स्वयं शिव से जुड़े हुए थे। उन्होंने अनेक मंदिर गुजरात, राजपुताना और बुंदेलखंड में बनवाए। उन्हें शिव को समर्पित किया, किंतु अपने हितेच्छुओं के मतों का सम्मान करते हुए वे विष्णु को भी पूजते थे और उन्होंने विष्णु मंदिर बनवाए और उनके रखरखाव के लिए दान दिया। आज भी मेवाड़ का राणा खुद को शिव का दीवान मानता है और जब वे एक लिंग के मंदिर का भ्रमण करते हैं तो वे ब्राह्मण पुरोहित से अनुष्ठान न करवाकर स्वयं की कर्मकांड करता है। अलबरूनी जो जानकारी हमें देता है वह उसके ब्राह्मण शिक्षकों से उसे मिली थी और स्वाभाविकतः उसे यह लगा कि भारत में वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रचार है। यह धारणा शायद अतिशयोक्तिपूर्ण थी किंतु गलत नहीं थी। गुप्त शासकों ने विष्णु की पूजा को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने विष्णु के स्तंभ स्थापित किए थे और उन्होंने अपने विरुद्धों में स्वयं को भागवत का भक्त कहा था। संभवतः गुप्त वंश के पतन के तुरंत बाद के काल में वैष्णव संप्रदाय के विस्तार को झटका लगा था, किंतु यह आंदोलन राजपूत राजाओं के अंतर्गत फिर से सतह हो गया। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने स्वयं को विष्णु के अवतार आदि वराह का रूप बताया और उसके उत्तराधिकारी को अपने एक शक्तिशाली मित्र यशोवर्मन चंडेल को विष्णु की मूर्ति समर्पित करना पड़ी थी, जिसके लिए उसने खजुराहो में एक भव्य मंदिर बनवाया था। लगभग उसी समय भक्ति के जो सिद्धांत दक्षिण में अलवारों और द्वारा पढ़ाए जा रहे थे वे उत्तर में आ गए और उन्होंने वैष्णव आंदोलन को एक नई ताकत दी। भागवत पुराण इन्हीं धार्मिक उथल पुथल का नतीजा था। पुराणों ने जिस अहेतुकी भक्ति का प्रवेश दिया वह एकेश्वरवाद के दर्शन पर आधारित थी। भागवत पुराण ईश्वर को मुक्त, शुद्ध और सर्वज्ञ मानता है। वह अपरिवर्तनीय, आदिम, निर्गुण मानता है। वह आत्मा है। वह चेतना के प्रकाश में बुद्धि को देखता है। वह परमानंद है। वह सर्जक और रक्षक है। जैसे गाय अपने अबोध बच्चे को दूध पिलाती है और उसे भयानक जानवरों से बचाती है, उसी प्रकार तू भी संकट से में पड़े लोगों को संकट से मुक्त करता है। वह अपने भक्तों को सदैव प्यार करता है और उनकी भक्ति से प्रसन्न होता है। उसकी कृपा से भक्तगण कर्म से जुड़े अहम की चेतना से मुक्त हो जाते हैं और जिस प्रकार ज्वालाओं की अग्नि काष्ठ के टुकड़ों को राख में बदल देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती है। ईश्वर निरंकुश किंतु व्यक्तिगत है और वह मनुष्य के कल्याण और अपने भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता है। भागवत पुराण विस्तार से ईश्वर के संपूर्ण अवतार कृष्ण के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है, जिससे उसके भक्तों के प्रेम का उद्दीपन हो और भक्ति के सिद्धांत का विस्तार हो। भक्ति का उद्देश्य भक्तों के आदर्श प्रहलाद ने वर्णित किया। वह कहता है, मैं देहधारियों के आनंद के परिणाम से परिचित हूँ और मैं दीर्घ जीवन, समृद्धि और धन नहीं चाहता और न ही विरंचि के वे आनंद और विशेषाधिकार चाहता हूँ जो इंद्रियों को तुष्ट करते हैं। मैं सिद्धि भी नहीं चाहता। मुझे अपने स्वयं के सेवकों के निकट बैठा लो। भक्ति और प्रेम के मार्ग में प्रायश्चित के समारोह, कठोर तप, यहाँ तक कि शास्त्रों का ज्ञान किसी काम के नहीं है। यह मस्तिष्क की एकाग्रता, सद्गुणों का पालन, ध्यान और तपस्या, सभी से मैत्री, भक्तों का साहचर्य, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर के नाम का जप, उल्लास, प्रेममय हरि को मस्तिष्क का समर्पण और आनंद से रोने, हंसने, नाचने और गाने की अपेक्षा की जाती है। ईश्वर का खोज जो स्वयं को सभी अशुद्धियों से स्वच्छ करना चाहता है और सांसारिक अस्तित्व के जाल से बचना चाहता है, उसे किसी तपस्वी को अपना गुरु बनाना चाहिए और उसे दुर्भावना से मुक्त होना चाहिए और सम्मान, भक्ति और प्रेम से अपने गुरु की ऐसी सेवा करनी चाहिए जैसे वह मैं ही हूँ। यह मार्ग सबके लिए खुला है, शूद्र, सुपच या चांडाल, सभी के लिए, यहाँ तक कि हाथियों के उस मुखिया के लिए भी जिसने ईश्वर से दया की याचना की थी और जिसे गाह के भयानक जबड़ों से बचा लिया गया। भागवत पुराण के भक्तिपूर्ण धर्म ने व्यक्ति के आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसने सामाजिक दासता की श्रृंखलाएं नहीं हटाई। तब भी उसकी मांग थी कि भागवत के सभी अनुयायियों को सभी कामनाओं का परित्याग करके उनकी अपनी जाति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसने पूजा उपासना के बाहरी रूपों के बारे में कोई विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। यह योग, ज्ञान, सद्गुण, वेदाध्ययन, तपस्या, दान, यज्ञ, प्रतिज्ञा, देव पूजा, मंत्र, तीर्थयात्रा, आत्मनियंत्रण को भक्तों के साहचार्य से निम्न कोटि का मानता है। तथापि इन्हें यह भक्ति के लिए एकदम अपरिहार्य नहीं मानता। इसमें मूर्तियों और प्रतीकों की पूजा की और यौगिक पद्धति से ईश्वर की मूर्ति का ध्यान करने की बात कही गई थी। भागवत पुराण ग्रंथों के प्राचीन धर्म से मध्यकाल के भक्ति के धर्म की ओर एक संक्रमण था, किंतु धर्म में भावनात्मक तत्व का प्रभाव इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह जाति की बढ़ती कठोरता का या पुरोहित की बढ़ती शक्ति का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर पाता। राजपूतों के आधिपत्य का काल विभाजन और संघर्ष का काल था। समाज एक ओर तो सामंती अराजकता और वंशों के संघर्षों से और दूसरी ओर धार्मिक मतभेदों और पुरोहित वर्ग के स्वार्थ के कारण कमजोर हो गया था, किंतु यद्यपि राजनीतिक शक्ति का अवसान हो रहा था, साहित्य, कला और विज्ञान अभी भी उन्नति कर रहे थे। भभूति राजशेखर और प्रबोध चंदोदय के लेखक कृष्ण मिश्र ने कालिदास की परंपरा जारी रखी। गणित, खगोलशास्त्र और विज्ञान की अन्य शाखाओं में भास्कराचार्य आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वाराहमिहिर की उत्तराधिकारी हुआ। हिंदू देवताओं की सेवा को समर्पित मूर्ति कला की शैली के कलाकारों के द्वारा विभिन्न शैलियों में विकसित की गई और वास्तुकला के स्मारक भव्य रूप में निर्मित किए गए। राजपूतों के इन घटिया झगड़ों और राजपूत कला के गौरव के इस परिदृश्य के बीच मुस्लिम विजय का भूचाल आया। 18वीं सदी में बलूचिस्तान से सिंध में मुस्लिमों का आगे बढ़ना इस इलाके की दुर्गमता, सुदूर बगदाद से संचार व्यवस्था बनाए रखने की कठिनाइयों, खासकर जब खिलाफत के केंद्र से बाहर के इलाकों को जाने वाले रास्तों को विद्रोही सरदारों द्वारा बंद कर दिए जाने से थम गया था। 3 सदियों बाद आक्रमण फिर से हुए, किंतु वे भिन्न जगहों से आए। सुबुक्तगीन और महमूद ने अपने वार्षिक धावे उत्तर पश्चिम से किए। उनका प्रभाव अधिक नहीं हुआ। कुछ मंदिर लूटे गए और कुछ शहर बर्बाद किए गए। हिंदू साहित्य राजवंश और उनके साथ हिंदू राज्य पंजाब से समाप्त हो गया, अन्यथा स्थिति वही रही। गजनी वंश का उद्देश्य भारत में स्थायी विजय नहीं था, वे तो पश्चिम में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। एक और सदी बीत गई और इसके दौरान तुर्कों के उत्थान के मध्य और पश्चिमी एशिया में जो उथल पुथल हुई, उससे अफगानिस्तान के गोरी शासकों का ध्यान निश्चित रूप से पूर्व की तरफ हुआ। यहाँ शिकार बलिदान के लिए तैयार था। मुस्लिम विजय के पहले भारत की वैसी ही स्थिति थी जैसी मकदूनिया की शक्ति के उत्थान के पहले यूनान की थी। दोनों ही क्षेत्रों में राजनीतिक एकता स्थापित करने की वही अक्षमता थी और विज्ञान, साहित्य और कला की आराधना के प्रति वैसी ही उत्सुकता और चमक थी। यह समानता और आगे गई, क्योंकि यदि मकदूनिया अर्ध हेनेनिक यूनान था तो भारत पर छा जाने वाले तुर्क गैर हिंदू राजपूत थे। 3री सदी शुरू हुई ही थी कि उत्तर भारत की विजय पूरी हो गई। सदी के एक चौथाई हिस्से के भीतर मुस्लिम सेनाओं ने पंजाब के से आसाम और कश्मीर से विंध्य तक के इलाके को रौंद डाला। राजपूत राजाओं ने शायद ही कोई प्रतिरोध किया। उनके लिए अचानक ही यह सब हो गया। प्रत्येक ने अकेले बहादुरी से युद्ध किया, किंतु किसी ने भी खास दूरदर्शिता नहीं प्रदर्शित की और उन सभी ने एकता और मिलीजुली शक्ति का कोई परिचय नहीं दिया। बंगाल के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन की कहानी संभवतः एकदम सही इतिहास न हो। तथापि वह सच्चा इतिहास तो है। यदि मुस्लिम सेनानायकों को पत्र लिखने की आदत थी, यदि उन्हें अपनी रपटों के लिए कोई मकसद की जरूरत थी, तो वे जूलियस सीजर की विजयोक्ति में वे आए, उन्होंने देखा और उन्होंने जीत लिया, न चुनकर उससे भी खराब किया होता। 100 साल और बीते और मैसूर तक भारत उनकी मुट्ठी में आ गया। मुस्लिम विजय का भारत की संस्कृति के विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। देखने में तो उसने सभी कुछ बर्बाद कर दिया। हिंदू धर्म जो जबरदस्त आघात पहुंचा, पुरोहितों और पंडितों को मिलने वाला राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया, हिंदू भवन नष्ट कर दिए गए, साहित्य को कोई राजकीय प्रोत्साहन नहीं मिला और वह पिछड़ गया। बाहर से देखने पर राजनीतिक विजय का अर्थ था सांस्कृतिक मृत्यु। बुनियादी रूप से उसका एक अलग असर हुआ। मुख्य राज्यों में हिंदी राजाओं का स्थान मुस्लिम राजाओं ने ले लिया। दिल्ली, कन्नौज, ग्वालियर, अनिलवाड़, देवगिरी और गौर इनके हाथ में चले गए। दूर के प्रदेशों के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर नया शासक आसपास के भूभाग का स्वामी था, जो उसकी घुड़सवार सेना के शिविर की मार की दूरी के भीतर थे। उसके परे जो छोटे भूस्वामी थे, वे अपने मिट्टी के किलों में सुरक्षित थे और प्रभुसत्ता का विरोध कर रहे थे। इन छोटे सरदारों को समाप्त करना सिसिफस के काम जैसा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के से लेकर अकबर तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला कई वंशों के हर ऊर्जावान शासक को उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए या उनसे राजस्व वसूल करने के लिए हर साल रजिया चलाना पड़ता था। वास्तव में शाही सत्ता ने स्थानीय स्वायत्तता की आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत प्रणाली का मुखौटा लगा रखा था। इस कारण यदि इसे बलबन, अलाउद्दीन या मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों द्वारा नियंत्रण में नहीं रखा जाता था, तो लगातार अराजकता फैलती रहती थी। मुस्लिम सत्ता पर इनका न सिर्फ दो तरीकों से बंदिश थी, बल्कि उसे स्वयं पर अन्य बंदिशें आरोपित करनी पड़ रही थी। हिंदुओं को नौकरी देना उनके शासन की एक अनिवार्यता थी। महमूद गजनवी के पास बड़ी तादाद में हिंदू सैनिक थे। उन्होंने उसके लिए मध्य एशिया में युद्ध किया और उसके हिंदू सेनानायक तिलक ने उसके मुस्लिम सेनानायक नियालतगीन के विद्रोह का दमन किया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में रुकने का तय किया, उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वह हिंदू कर्मचारियों को रखे जो असैनिक प्रशासन से परिचित थे, क्योंकि इसके बिना शासन और राजस्व एकत्र करने का काम तहस नहस हो जाता। मुस्लिम भारत की सीमा के पार से अपने साथ शिल्पी, लेखापाल और लिपिक नहीं लाए थे। उनकी इमारतें हिंदुओं द्वारा निर्मित की गई थी, जिन्होंने अपने प्राचीन नियमों को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया था। उनके सिक्के हिंदू सुनारों द्वारा ढाले जाते थे और उनका हिसाब किताब हिंदू अधिकारियों के द्वारा रखा जाता था। ब्राह्मण कानून वेत्ता राजा को हिंदू कानून के प्रशासन के बारे में सलाह देते थे और ब्राह्मण खगोल वेत्ता उनके सामान्य कामकाज के सुचालन में सहायता करता था। जो मुसलमान भारत आए, उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया। वे हिंदू लोगों से घिरे रहते थे और उनके साथ एक निरंतर चलने वाली शत्रुता असंभव थी। आपसी संपर्क से आपसी समझ बनी। जिन बहुत से लोगों ने अपना धर्म बदल लिया था, वे उनसे बहुत कम भिन्न थे जो उनके पीछे छूट गए थे। इस प्रकार विजय के पहले आघात के खत्म होने के बाद हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के समान रहने के लिए कोई तरीका तलाशने के लिए तैयार हो गए। नया जीवन तलाशने की कोशिशों के कारण एक नई संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो न तो पूरी तरह हिंदू थी और न शुद्ध रूप से मुस्लिम। वह वास्तव में मुस्लिम हिंदू संस्कृति थी। सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदू कला, हिंदू साहित्य और हिंदू विज्ञान ने ही मुस्लिम तत्वों को आत्मसात किया, बल्कि हिंदू संस्कृति की आत्मा और हिंदू मस्तिष्क का चिंतन भी बदल गए और उधर मुस्लिमों के जीवन के हर पहलू में भी बदलाव आया। दक्षिण में हिंदू संप्रदायों पर इस्लाम के प्रभाव के बारे में पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। जो आंदोलन वहां प्रारंभ हुआ उसका विकास उत्तर में जारी रहा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिंदुस्तान और बंगाल के धार्मिक नेताओं ने 14वीं सदी के बाद प्राचीन धर्म के कुछ तत्वों को नकारते हैं और अन्य तत्वों पर जोर देते हैं और इस प्रकार वे हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। उसी समय मुस्लिम सूफी सिलसिलों और मुस्लिम लेखकों और कवियों ने हिंदू प्रथाओं और सिद्धांतों को आत्मसात करने की जबरदस्त प्रवृत्ति दिखाई। कुछ मामलों में तो हिंदू देवताओं की पूजा को भी अपना लिया। उस काल का मुस्लिम स्थापत्य भी वही संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। हिंदू महल, मंदिर और छतरियां अब पिछले काल की शुद्ध शैली में नहीं बन रहे थे। उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम स्थापत्य के तत्वों को अंगीकार किया बल्कि उन्होंने एक नई भावना से ओतप्रोत हुए जो यह प्रकट करते थे कि सौंदर्य शास्त्र के नए मूल्यों में कैसे परिवर्तन हो गए थे। इसके अतिरिक्त यह प्रभाव देश के किसी खास भाग तक सीमित नहीं था बल्कि यह राजपुताना और मध्य भारत, मथुरा, वृंदावन और बनारस जैसे तीर्थों में अत्यंत दृढ़ता से दिखता है और इसे सुदूर काठमांडू और मदुरा में भी महसूस किया जाता है। मस्जिद, मकबरे और मुस्लिमों के महल उतने ही भारतीय हैं। मुसलमानों ने तथाकथित अरब और ईरानी स्थापत्य की शैलियों से कुछ विशेष तत्व तो उधार लिया किंतु उन्होंने भारत में एक नई शैली विकसित की या कहें कई नई शैलियां विकसित की जो हिंदू शैलियों की परंपराओं को जारी रखे हुए हैं। वास्तव में इस काल की स्थापत्य शैलियों चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं क्योंकि दोनों ही एक ही मूल से उत्पन्न हुई हैं। उनका उद्देश्य भिन्न है किंतु उनके स्वरूप का महत्व वही रहा। भारत की मुगल या राजपूत चित्रकला भारतीय स्थापत्य के समान है। वास्तव में चित्रकला में एक सौंदर्य शास्त्रीय नियम स्वरूप को स्थापत्य की तुलना में ज्यादा नियंत्रित करता है। अजंता और दिल्ली या जयपुर की शैलियों में बहुत अंतर है। रेखा, रंग और लय सभी बदल जाते हैं किंतु दिल्ली और जयपुर का कांगड़ा में जो अंतर है वह एक ही शैली के दो कलाकारों के बीच का अंतर है इससे ज्यादा शायद कुछ नहीं। मध्य एशियाई और ईरानी कला का प्रभाव स्पष्ट है किंतु भारतीय कला चाहे वह मुगल बादशाहों और नवाबों का या राजपुताना या तंजोर के हिंदू राजाओं के दरबारों में रची गई हो एक दास के समान विदेशी प्रादर्श की नकल नहीं करती। उसमें उसकी स्वयं की वैयक्तिकता है और उसे सिर्फ मुस्लिम हिंदू कला के रूप में ही संबोधित किया जा सकता है। साहित्य में संस्कृत लोगों की अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं करती। विचार आत्माभिव्यक्ति के लिए नए उपकरण उत्पन्न करते हैं। उत्तर में हिंदी, पश्चिम में मराठी और पूर्व में बंगाली साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित होती है और हिंदू और मुस्लिम उनकी उपलब्धियों के गौरव को समान रूप से अपना समझते हैं। इसके ऊपर भाषा एक नया संश्लेषण घटता है। मुस्लिम अपनी तुर्की और फारसी त्याग देता है और हिंदुओं की बोली अपना लेता है। वह उसे अपने स्थापत्य और चित्रकला के समान अपनी जरूरतों के अनुसार संशोधित कर लेता है और इस प्रकार एक नया साहित्यिक माध्यम उर्दू विकसित होता है। फिर मुसलमान और हिंदू दोनों उसे अपना समझते हुए अपना लेते हैं और एक विचित्र बात होती है, हिंदी भाषा एक तरह की साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए काम में लाई जाती है और उर्दू एक अन्य तरह की अभिव्यक्ति के लिए। इस प्रकार जब हिंदू या मुस्लिम की रचनात्मक आवेग एक प्रवाह में प्रवाहित होता है तो वह हिंदी का उपयोग करता है और जब यह आवेग उसे दूसरे प्रवाह में ले जाता है तो वह उर्दू का उपयोग करता है। मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद हिंद और उर्दू की तुलना करने में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उनके अनुसार हिंदी स्वाभाविक सीधे सादे मधुर प्रपंच विहीन और बिना अतिशयोक्ति वाली शैली है जिसमें अपनी धरती का जुड़ाव परंपरा और भावनाएं सजीव होती हैं, जबकि उर्दू जटिल सूक्ष्म ऊंची उड़ान वाली है। उसमें लय की ऊर्जा और शब्दों की शक्ति रूपक की शान और शब्द की चयन भव्यता की धड़कन है, और यह ईरान और तुर्किस्तान से रूपक और उपमाएं लेती हैं। एक अन्य लेखक विलग्राम के मीर गुलाम अली आजाद कहते हैं, अरबी और फारसी के महत्वपूर्ण रचनाकारों ने विचारों की शिराओं से रक्त लिया है और सूक्ष्म विचारों की शैली को उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया। भारत के जादूगर इस घाटी में पीछे नहीं रहे, बल्कि नायिका भेद की कला में वे अपने जादुई कदम उनसे और आगे ले जाते हैं। जो व्यक्ति फारसी और हिंदी दोनों जानता है और जो काले और सफेद के बीच फर्क करने की योग्यता रखता है, वह फकीर के शब्दों से सहमत होगा। हिंदी के अनेक मुस्लिम कवियों और उर्दू के हिंदू कवियों के बारे में विस्तार से लिखना यहाँ स्थानाभाव के कारण संभव नहीं है। पंडित श्याम विहारी मिश्र और उनके भाइयों के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के मुस्लिम कवियों की सूची दी गई है, और किसी भी तज़किरे दिल्ली के मुंशी श्रीराम के ताजा तज़किरा में उर्दू के हिंदू कवियों की सूची दी गई है। मीर गुलाम अली आजाद विलग्राम के 8 मुस्लिम कवियों के नाम उल्लेख करते हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा, और वे उनकी कृतियों से कई उदाहरण देते हैं। इस प्रकार हिंदी पर मुस्लिम प्रभाव गहरा था, और यह प्रभाव उसके शब्द भंडार व्याकरण रूपकों पिंगल और शैली में दिखता है। जो हिंदी के संबंध में सत्य है, वही मराठी बंगाली और पंजाबी तथा सिंधी के लिए भी सत्य है। विज्ञान में हिंदुओं को गणित खगोलशास्त्र और औषधि की अत्यंत विकसित प्रणालियां विरासत में मिली थी, और उन्होंने विज्ञान की इन शाखाओं में अरबों को अपना ऋणी बना लिया था। किंतु अरबों ने यूनानियों से बहुत कुछ ऋण लिया था, और हिंदू और यूनानी विचारों के मिले जुले आधार पर अपना मूल ढांचा खड़ा किया। इसलिए जब मुस्लिम भारत आए तो वे अपने साथ उनकी स्वयं की वैज्ञानिक प्रणालियां लाए, जो हिंदुओं से कम नहीं थी, और उनमें कुछ नए तत्व भी थे। हिंदुओं को जो नया प्रतीत हुआ उसे अपनी प्रणालियों में अंगीकार करने में उन्होंने परहेज नहीं किया। इस प्रकार हिंदू खगोल शास्त्रियों ने मुस्लिमों से कई तकनीकी शब्द लिए, जैसे अक्षांश और देशांश की मुस्लिम गणना और पंचांग की अन्य कई बातें, और जन्म कुंडली में एक पूरी शाखा जिसे वे ताजिक कहते हैं। महाराजा जयसिंह ने हिंदू पंचांग को सुधारने का काम किया। उसने जयपुर मथुरा दिल्ली और बनार में वेदशालाएं बनवाई। उसके पंडितों ने अल मजिस्ती का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया, और उसकी महान कृति जिक मुहम्मद शाही, उसने उलुग बेग, नसीरुद्दीन तूसी, अल गुरगान, जमशेद काशी और दूसरों के खगोल शास्त्रीय तालिकाओं का उपयोग किया। हिंदू औषधियों ने मुस्लिमों से धातु तेजाबों और कमियागिरी और कलाओं की कई प्रक्रियाएं उधार ली। भारत में मुस्लिमों ने जो कई शिल्प और कलाएं शुरू की उनमें है कागज का निर्माण, मीनाकारी और मिट्टी के बर्तनों में पॉलिश का काम, कई तरह के बुनाई की चीजें और बेल बूटे का काम। यदि भारत के आर्थिक जीवन में काफी बदलाव हुए तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सामाजिक जीवन के प्रति इस्लामी नजरिया प्रजातांत्रिक था। वह जन्म या वंशानुगतता को बहुत कम महत्व देता था, और इसने हिंदू धर्म में सामाजिक समानता की भावना तेज कर दी और सामाजिक बंधनों को तोड़ने की ओर प्रवृत्त किया। राजनीतिक रूप से मुस्लिम पूर्व भारत सामंती रूप से विशिष्ट वादी था। हर छोटा कबीला अपनी स्वायत्तता को सीने से लगाए रखना चाहता था और बेमन से बादशाह की अधीनता स्वीकार करता था। राज्य कबीलों के सरदारों का प्रांतों, जिलों और गांवों का एक सामंती अधिक्रम था, और उसमें वे सभी दोस्त थे जो इस प्रणाली में होते हैं। मुस्लिम आधिपत्य ने स्वतंत्र शक्ति के कितने ही केंद्रों को समाप्त करने का और केंद्रीय सरकार और व्यक्ति के बीच हस्तक्षेप करने वाले शासकों तथा सरदारों का दमन करने का प्रयास किया, जिससे राजनीतिक समरूपता बनाने और ज्यादा विशद स्वामी भक्ति की भावना का विकास हुआ। भारतीय जीवन के सभी हिस्सों पर मुस्लिम प्रभाव के विस्तार के बारे में बढ़ चढ़कर कहना शायद ही संभव है, किंतु जितना वह रिवाजों में घरू जीवन के अंतरंग विवरणों में संगीत में पोषक के चलन में भोजन पकाने में विवाह समारोहों में त्योहारों में और मेलों के समारोहों में और मराठी राजपूत और सिख शासकों की दरबारी संस्थाओं तथा शिष्टाचार में दिखता है, उतना स्पष्ट वह कहीं नहीं दिखता। बाबर के समय हिंदू और मुस्लिम इतने समान रूप से रहते और सोचते थे कि उसे उनका खास हिंदुस्तानी तरीका देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके उत्तराधिकारियों ने इस विरासत को इतने शानदार तरीके से अलंकृत किया और इतनी भव्यता से समृद्ध किया कि भारत आज उस विरासत पर गर्व कर सकता है जो वे अपने पीछे छोड़ गए हैं।